ओम शांति, ओम शांति। कैसे हैं आप? बढ़िया या बहुत बढ़िया? खुश या आनंदमय? तो हमारे सामने रूहानी मुस्कुराहट वाला चेहरा और पुण्य से माला माल। पुण्य आत्मा कौन होती है? जो अपने शुभ भावनाओं से हर वक्त हर एक को दुआएं देती रहे। तो हमारे सामने आज वो हस्ती है जो पांडव भवन के आंगन में टहलते टहलते पूरे विश्व को शुभ दुआएं 24 घंटे देते हैं। आपके अंदर शुभ दुआओं का बल, पुण्य का बल जो चारों ओर फैलता ही रहता है। छोटा सा आपका परिचय है। आप ज्ञान में 47 वर्षों से हैं और मधुबन में 42 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय मधुबन में सिक्योरिटी विंग और रात्रि क्लास जो चलती है उसके प्रोग्राम बनाने की सेवा आपकी है। और आप फरीदाबाद हरियाणा से हैं और मधुबन में वहीं से ही आप समर्पित हुए। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशियस तथा दुबई व लंदन में अनेकानेक स्थानों पर आपने योग भट्टियां कराने की सेवा की है और बहुत सारी आत्माओं की दुआएं ली है। लौकिक घर आपका राजस्थान के अलवर जिले में एक गाँव दरोदा है। लौकिक घर में गीता पाठशाला चलती है। लौकिक परिवार में 3 बहनें ज्ञान में चलती हैं और 2 बहनों के घर में गीता पाठशाला चलती है। 3 लौकिक बहनों की 5 लड़कियां और 5 बाबा के सरेंडर समर्पित बहनें हैं। तो ये आपकी डिवाइन फैमिली है। अभी मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आज का विषय परिस्थितियों पर स्वस्थिति से विजय कैसे पाए इसकी आप विधि बताएं। भ्राता छोटेलाल भाई,
ओम शांति। जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे हम सभी देख रहे हैं कि संसार में हलचल बढ़ती जाती है। उधर हलचल और इधर हमारी स्थिति अचल और अडोल बनती जाए, तभी हम अनेक आत्माओं को हलचल के प्रभाव से मुक्त रख सकेंगे। क्योंकि यदि हमारी स्थिति स्वस्थिति हलचल में आ गई तो परिस्थितियां बहुत विकराल अनुभव होती हैं। और स्थिति जहां श्रेष्ठ है, अचल अडोल है, महान है, पावरफुल है, तो कैसी भी परिस्थिति हो सूली से कांटा बन जाएगी। बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगी, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। इसलिए स्थिति को श्रेष्ठ योग युक्त बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या अभ्यास करें, किन बातों का ध्यान देकर चलें, इस संबंध में कुछ एक बातें अनुभव के आधार से आप सभी के सामने रखेंगे। तो जहां स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं, एक प्रैक्टिकल का छोटा सा अनुभव। एक जगह हम भट्टी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्टी थी। तीसरे दिन बहनजी ने कहा कि एक भाई ने नया मकान बनाया है, उसकी ओपनिंग करने चलना है। ठीक है जी, चलिए। दिन के लगभग यही टाइम था, 10:30-11 बजे थे और मकान छोटा था। ओपनिंग हुआ और उसके बाद रोड पर टेंट लगाया हुआ था, उसमें बैठ के हम क्लास करा रहे थे। अच्छा भला मौसम था, देखते देखते काले काले बादल आने लगे, मोटी मोटी बूंद टपकना शुरू हो गया। तो सब में हलचल होने लगी, बरसात आ रही है, टेंट में बैठे क्या होगा। हमने क्लास बंद किया और सबको कहा कभी कोई कमजोर नेगेटिव संकल्प नहीं करेगा, अभी हम 3 मिनट कॉमेंट्री से योग करेंगे, जैसे सबको योग कराया जाए वैसे योग करना है। तो हमने योग कराना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर और प्रकृति को दान दे रहा हूँ। और हे प्रकृति देवी, हम आपका सम्मान करते हैं लेकिन आप अभी नहीं, आप 1 घंटे के बाद आना। ऐसे कर 3 मिनट कॉमेंट्री से योग कराया है और उसके बाद जो मोटी मोटी बूंद थी वो धीरे धीरे कर शांत होती चली गई और उसके बाद पूरा एक घंटा क्लास हुआ, फिर डेढ़ घंटा ब्रह्मा भोजन हुआ, तब तक तो सब कुछ ठीक ही था, फिर तो हम वहां से चले गए। तो इस तरह से जहां स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं, इसलिए स्थिति को श्रेष्ठ योग युक्त बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कई सारी बातें इस भट्ठी में आप सबने सुनी होंगी, लेकिन उसके साथ साथ इस भट्ठी से आप सबका आप आखिरी दिन है तो आज एक रूहानी तीन गिफ्ट लेकर आपको जाएंगे, तो ये भट्ठी और आपकी सदा के लिए यादगार सक्सेसफुल बन जाएगी। वो तीन अभ्यास हैं रोजाना की दिनचर्या में हम करके चलें तो श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति, अथवा कहें कि आप कम से कम 7-8 घंटे योग का चार्ट आप आराम से बना सकते हैं अगर ये तीनों अभ्यास विधि पूर्वक रोजाना की दिनचर्या में करके चलें। जिनको सहज निरंतर योगी बनना है, पवित्रता में संपूर्णता लानी है, मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाना है, तो स्थिति को योग युक्त बनाना है, तो ये तीनों अभ्यास अभी से ही शुरू कर दें। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है, जो भी सामने आए, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, कम से कम 50, ज्यादा आप जितनों को भी देख सकते हो। आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, विकर्मों से बचने का साधन आत्मा। विकर्म क्यों हो रहे हैं? देह भान में देह को देख रहे हैं। तो ये अभ्यास करो, जो भी सामने आए, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, गिनती करके कम से कम लक्ष्य रखो 50 का, जितना भी देख सको, ज्यादा देखो तो अच्छी बात है। क्या होगा इससे? हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। चलो बन जाओ आत्मा। तो पहला बताया 50 लोगों को सारे दिन में आत्मा देखने का अभ्यास, दूसरा आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। जब स्मृति आए, एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ, ऐसा अनुभव करो जैसे कि ये शरीर मेरा धीरे धीरे खत्म हो गया है, केवल मैं आत्मा बची हूं और मैं आत्मा उड़ के जा रही हूं बाबा के पास, वतन में परम धाम पहुंचे, बाबा को टच किया, सर्व शक्तियां ग्रहण की और वापस आ गए। ऐसे एक एक दो दो मिनट जब स्मृति आए, देह और देह की दुनिया से जीते जी मर जाओ, निराकारी बन जाओ, शरीरी बिंदु बन जाओ। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हम शरीरी बनते हैं तो आत्मा स्वतः इस देह और देह की दुनिया के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होकर उस सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे आ जाती है, और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो उसका संसार में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भगवान आपको वहां मौत के मुंह से भी निकालकर बाहर ले आएगा। बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विद आनर बनाएगा, यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का भी साधन बनेगा। इसलिए इस अभ्यास में अपने आप को परफेक्ट बनाना बहुत बहुत जरूरी है। जब स्मृति आए संकल्प किया रहे शरीर बन जाओ। इसलिए देखो बाबा ने कितने सुंदर नियम बनाए हैं, सारे दिन में हर घंटे में यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल एक मिनट का, फिर बाकी 5-6 और ट्रैफिक कंट्रोल। तो उसके अलावा भी हमारा लक्ष्य हो जब स्मृति आए आधा मिनट एक मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, जिससे कि सब कुछ खत्म हो गया है, मैं और बाबा ही बचे बस। चाहे कितना भी भीड़ भाड़ शोरगुल हो, उसमें रहते हुए भी पिन ड्रॉप साइलेंस में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, निराकारी बन जाओ, तो यहाँ के दुनिया के सब प्रकार के हलचलों के प्रभाव से आप मुक्त रहेंगे। योग में भी क्या करना होता है? निराकारी बनना है, आत्मभिमानी बनना है। अगर आपने सारे दिन में अभ्यास किया है तो फिर से वही करना होगा, बनना है तो क्या है, इजी हो जाएगा बहुत। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देख कर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। तो जो हमारे संगम योगी संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है, फरिश्ता स्थिति, उसको बार बार हम अपने सामने लाएं कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना है। कैसा होगा हमारा वो फरिश्ता रूप? हर एक को बनना है ना फरिश्ता। तो जो बनना है अंत में, उसको अभी से अपने स्वरूप में संभालो, वैसा बन जाओ, उसका अनुभव करो। तो अभी दो मिनट के लिए हम उस स्थिति का अनुभव करेंगे। तो ऐसा अनुभव करना है कि ये मेरा शरीर धीरे धीरे लाइट का बनता जा रहा है, और बनते बनते सारा शरीर लाइट का बन गया है, और इस लाइट के शरीर में मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान। मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट, और मुझे आत्मा से चारों ओर लाइट और माइट की किरणें फैल रही है। देखो अपने उस डबल लाइट फरिश्ते रूप को, कितना हल्का न्यारा और प्यारा लगता है। अब मैं फरिश्ता उड़ता हुआ जा रहा हूं सूक्ष्म बदन की ओर, और उड़ते उड़ते पहुंच गया हूं सूक्ष्म बदन फरिश्तों की दुनिया में, जहां चारों ओर लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश। यही वो फरिश्तों की दुनिया है, जहां हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में खड़े हैं। उनकी भ्रकुटी से ज्योति बिंदु शिव बाबा चमक रहे हैं, दूर दूर तक लाइट और माइट की किरणें फैल रही है। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते देते बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, और वरदान दे रहे हैं, बच्चे तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन माया जीत आत्मा हो। अनेकों बार तुम सभी ने माया के अनेक विघ्न परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है, और फिर से विजयी बनना है। बाबा ये भी वरदान दे रहे हैं, तुम इस संसार में पवित्रता के अवतार हो। अवतरित हुए फरिश्ते हो, तुम्हारे द्वारा निकली हुई पवित्रता की किरणों से संसार से विकारों का किचड़ा भस्म हो रहा है, आत्माएं सुख शांति का अनुभव कर रही है। इस प्रकार प्यारे बाबा से वरदानों की अनुभूति करते हुए अब मैं फरिश्ता वापिस साकारी वतन में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों अभ्यास रोजाना की दिनचर्या में आप करके चलें। पहला बताया 50 लोगों को आत्मा देखने का सारे दिन में, दूसरा बताया 50 बार इस शरीरी बनने की प्रैक्टिस करना, और तीसरा स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। ये तीनों अभ्यास आप रोजाना की दिनचर्या में करके चलो, तो उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि वहां आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे सहज ही मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, एक पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे। और श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाने के लिए, परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए, हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं। क्योंकि सबसे पहले मन में किसी भी कार्य के लिए संकल्प आता है, मुझे ये काम करना है, वहां जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, किसी बात के लिए संकल्प आता है ना। अगर वो संकल्प हमारा पॉजिटिव पावरफुल है तो उसका रिजल्ट वैसा होगा, और संकल्प यदि नेगेटिव है, व्यर्थ है, तो उसका रिजल्ट वैसा होगा। अनेक समस्या परिस्थितियों का कारण बनते हैं हमारे मन के विचार। मेरे पास पैसा कम है, मेरे सामने बहुत समस्याएं आ रही है, मेरी ये बीमारी नहीं दूर हो पा रही है, मैं कब तक बीमार रहूंगी, क्या करें, कैसे करें, ये सब विचार ही हमारे कमजोर नेगेटिव विचार ही परिस्थितियों का, विघ्नों का, बीमारियों का कारण बनते हैं। हम सबको पता है आज जिसके सामने जो भी विघ्न परिस्थितियां आ रहे हैं उनका कारण, कहने में तो हम कह देते हैं ये मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, ये मेरे को सदा तंग करते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करता। आज जिसके सामने जो भी विघ्न परिस्थिति आ रही है, वास्तव में वो उस आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब अनुसार ही हो रहा है, गलत किसी के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा ने हमको ड्रामा का ज्ञान दिया, बच्चे जो कुछ हो रहा है वही कल्याणकारी है, ड्रामा एक रेट बना है, जो हो रहा है वही सत्य है, वही निश्चित है, वैसे ही आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब चुकतु होना है। इस बात को हम मन से स्वीकार कर लें, इमर्ज रूप में रख के चलें, तो कभी दुखी परेशान नहीं होंगे। कैसे एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्पों का प्रभाव हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। जैसा भी आपके मन में संकल्प चल रहा है, मान लो कोई बहुत समय से बीमार है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मेरे को ये बीमारी है, ये विचार आपने अपने मन में रख लिया तो बीमारी रहेगी, ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा जैसा तुम सोचोगे वैसा बनोगे। अब हम सोच ही रहे मुझे ये बीमारी है तो बीमारी रहेगी, ठीक है बीमारी आई है कर्म का हिसाब किताब चुप तो होने के लिए, लेकिन पॉजिटिव सोचे, बाबा मुझे इस बीमारी से मुक्त होना है, आपने मुझे ठीक करना है, मेरी बीमारी ठीक होती जा रही है। अमृत वेले आंख खुलते ही ये पॉजिटिव पावरफुल संकल्प 9 बार कम से कम अपने अंतर मन में भर दो। मीठे बाबा गुड मॉर्निंग, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो आपको अनेक कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरी बीमारी ठीक होती जा रही है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, तो स्वस्थ होते चले जाएंगे। किसी के पास धन बहुत कम है, मैं बहुत धनवान हूं, गुणवान हूं, महान हूं, संकल्प करो देखो आने लगे। अब पहले से हम ये सोच लेते हैं मैं तो बहुत गरीब हूं, तो गरीब ही रहेंगे, तो जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। तो कैसे हमारे मन के विचारों का प्रभाव हमारे मन शरीर और कार्यों पर पड़ता है, एक प्रैक्टिकल का अनुभव पहले मैं सुनाता हूं, एक नेगेटिव कमजोर संकल्प का अनुभव, ताकि हम अपने आप को उससे बचा सके। एक भाई का फोन आया, कहने लगा भाई जी मैं 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूं और मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है, हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है, क्या करें, कहां जाएं, बड़ी आयु में बड़ा मुश्किल हो गया। तो हम भी सोचने लगे भी ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ इनके साथ तो जरूर इन्होंने कुछ गलत सोचा होगा। तो पूछा उससे भाई याद करो आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था, तो एक मिनट में सोच कर कहता है हाँ हम सोचते थे कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो, तो जो सोचा वही हो गया उनके साथ। ये बड़ी एक सूक्ष्म प्रक्रिया है, इसलिए ध्यान देने की बात है कि जो हम बनना करना चाहते हैं वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें। अब सुनिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प का अनुभव। एक भाई को कैंसर हो गया था, अंतिम स्टेज में पहुंच गया और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आप केवल 4 महीने ही जिंदा रहेंगे, जो करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया, उसने डॉक्टर की बात सुनकर एकदम पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया कि नहीं मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के यज्ञ की सेवा करने, कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है। एकदम डॉक्टर की बात के अपोजिट और पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया। तो देखो ये नियम है, हम सभी का शरीर बॉडी जिन सेलों से बना है वो हर एक व्यक्ति के शरीर के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं। नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हरेक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। आप में से कोई मेडिकल से संबंधित होंगे तो इस चीज को अच्छी रीति जानते हैं। तो और नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है? जैसा हम संकल्प कर रहे हैं वैसे सेल्स का निर्माण होता जाता है, पुराने सेल्स खत्म होते जाते हैं। तो उस भाई ने जब ये संकल्प किया मुझे जिंदा रहना है, भगवान की सेवा करनी है, कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए और जो कैंसर बीमारी के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए। क्योंकि पॉजिटिव सेल्स बनते गए तो नेगेटिव सेल्स निकलते गए। और आज इस बात को लगभग 16 साल होने को आए हैं, वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की अति सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। ताली बजाई लेकिन जोर से नहीं बजाई, सबने नहीं बजाई। हाँ, क्यों मैंने ये बात कही? वैसे देखो समय ऐसा है, वैसे सब ठीक बैठे लेकिन कोई कोई थोड़ा सा वाणी से परे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ताली बजती है तो क्या होता है? अलर्टनेस आ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी, सुस्ती भाग जाएगी, तो क्लास का पूर्ण आनंद ले सकेंगे। क्योंकि आप यहाँ बट्ठी करने क्लास करने आए और बैठे भले यहाँ शरीर से लेकिन बुद्धि से कहीं और होंगे, सुस्ती के प्रभाव में तो क्लास मिस हो जाएगी। तो जहां आपको लगे कि ताली की जरूरत है तो जरूर बजाओ ताकि सब में अलर्टनेस बनी रहे। तो इस तरह से हम अपने संकल्प शक्ति को यदि पॉजिटिव पावरफुल बना के चलेंगे तो फिर आप जो संकल्प करेंगे वही होगा। इसलिए केवल ज्ञान नहीं लेकिन हर बात के पीछे एक हम अनुभव सुना रहे हैं ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। अगली पॉइंट, श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाने के लिए या परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए हम अमृत वेले आंख खुलते ही कोई न कोई एक स्वमान इमर्ज कर ले। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लाइट हाउस माइट हाउस, ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े शक्ति की अनुभूति और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करो। तो स्वमान से क्या होगा? हमारे विचार महान बनते हैं। स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है, दूसरों से भी सम्मान मिलता है। स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। आजकल बहुत ऐसे हो रहा है, कोई किसी से पैसे ले लेते हैं देते नहीं है, और जब पैसे नहीं मिलते तो बार बार बुद्धियोग उधर ही जाता है, क्या करें, इतना पैसा दे दिया नहीं मिल रहा है, टेंशन हो जाता है, बाबा ज्ञान योग सब एक तरफ रह जाता है, उसमें ही बुद्धि लगी रहती है, क्या करें ऐसी आत्माओं के लिए। प्रैक्टिकल का अनुभव, एक भाई ने जमीन के प्लाट के लिए सौदा किया था 25 लाख रुपए में। बातचीत होगी, सौदा फाइनल होगा, कहा फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। पैसे लेकर गया, कागज वगैरह सब तैयार हो गए तो बोल ठीक है पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते। तो उसने 25 लाख रुपए दे दिए और पैसे लेकर व्यक्ति बदल गया कि आपको ये प्लाट नहीं, हम ये प्लाट देंगे। एक जैसे दो प्लाट थे बराबर के, बात हुई थी एक नंबर की, वो देना चाहता है दो नंबर, कोई मौके की जगह होगी। तो उसने कहा नहीं मुझे तो एक नंबर ही चाहिए। बोले एक नंबर नहीं मिलेगा, दो नंबर देंगे। तो बोले ठीक है आपको नहीं देना हो तो मेरे पैसे वापस कर दो, कल ले जाना। कल गया 5 दिन बाद, 5 दिन बाद गया 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया महीना बाद, ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे भी नहीं दे रहा, प्लाट भी नहीं दे रहा। तो उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चले। तो उस भाई का फोन आया हमारे पास, भाई जी मेरे सामने ऐसे से बड़ी समस्या आ गई है, वो व्यक्ति पैसे भी नहीं दे रहा, प्लाट भी नहीं दे रहा, मैं क्या करूं। तो हमने उन्हें बताया कि आप एक प्रयोग करिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं जिसने मेरे पैसे लिए। ऐसे रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करो अमृत वेले, और जब योग करें तभी भी ये संकल्प करना कि मेरे योग के पावरफुल वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचे और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए है। मैंने कहा ये संकल्प जरूर करना तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा। तो बोल ठीक है। उसने ऐसा करना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियों के पावरफुल वाइब्रेशंस लेके उस आत्मा को दे रहा हूँ, ये मेरे योग के पावरफुल वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुँचे और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे वो योग करता गया 21 दिन का बोला हमने। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के और 20 लाख 25 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस ने बाबा के योग ने कराया। तो आप में से भी किनों के सामने ऐसी समस्या हो तो आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। अगली पॉइंट, श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाने के लिए हम अपने आप को व्यर्थ के विचारों से कंप्लीट मुक्त बनाएं। सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का ही स्वरूप बनकर चलें। बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। क्योंकि ज्यादातर भाई बहनों के बहुत सारा समय और शक्तियां व्यर्थ के विचारों में वेस्ट चली जाती है, स्थिति साधारण हो जाती है। क्यों व्यर्थ के विचार चलते हैं? जहां हम अपने आप को खाली फ्री छोड़ देते हैं, मन को कोई काम नहीं देते। तो जिनको व्यर्थ से मुक्त होना, स्थिति को श्रेष्ठ योग युक्त बनाना है, वो हमेशा कोई न कोई स्वमान का अभ्यास, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, मनन चिंतन, स्टडी करके चलना, इन सब बातों में अपने आप को बिजी रखो तो वहां व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं मिलेगी। आपके विचार समर्थ शक्तिशाली बने रहेंगे और जहां विचार समर्थ शक्तिशाली हैं तो जैसा कि सुनाया, यदि व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे तो समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। तो कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक कोई भाई सुना रहे थे, उनको एक कंपनी में सर्विस के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। किसी भाई को एक कंपनी में सर्विस के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो उनके मन में भी व्यर्थ के विचारों की थोड़ी हलचल हो रही थी। पता नहीं क्या प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। तो उन्होंने किसी सीनियर भाई से फोन कर पूछा, भाई मेरे मन में थोड़ा सा ऐसे व्यर्थ के विचारों की हलचल है, तो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, आप थोड़ा गाइड करेंगे। तो उनको बताया कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा है, याद किया है, वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तीसरा, सफेद कपड़े पहन के बैज लगा के जाना जो दूर से दिखाई दे। उसने ऐसा ही किया, सफेद कपड़े पहन के बैज लगा के मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है और मैंने जो पढ़ाई याद किया वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। गया तो जहां इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा तो दो बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज पर गया। तो बैज को देखकर वो कहते हैं, अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। बोल फिर तो आप मेडिटेशन कराना भी जानते होंगे? बोल हाँ जी। तो क्या हमें भी कराएंगे मेडिटेशन की? हाँ जी। तो उसने थोड़ा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेंट्री से योग और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया। योग पूरा हो गया फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर उसने 5 मिनट के बाद कहा, साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है। तो उनकी आंखें खुली, अच्छा आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो बोले मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूं। बोले गीत गाकर सुनाएंगे? बोले हाँ जी। ये इंटरव्यू हो रहा है देखो हैं? तो इंटरव्यू में ये नहीं है कि आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न कोई भी कैसा पूछा जा सकता है, लेकिन उस प्रश्न का आप कितना फास्ट और एक्यूरेट जवाब देते हैं उस पर इंटरव्यू की सफलता निर्भर करती है ज्यादातर। तो उससे जो कुछ पूछा गया फटाफट उसका वैसा ही वो जवाब देता गया। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अब वो गीत भी ऐसा तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। तीन चार मिनट का ही गीत, गीत पूरा हो गया है, फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर पांच मिनट के बाद उसने कहा साहब अभी गीत पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा आप तो गीत गाने बहुत अच्छा जानते हो, तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। तो ये क्या हुआ, समर्थ संकल्पों की कमाल, शक्तिशाली विचारों की कमाल। इसलिए कैसी भी समस्या परिस्थिति विघन आए सामने, कभी भी कमजोर नेगेटिव व्यर्थ के विचारों को नहीं आने देना, क्योंकि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हमारा, हमारे इस मन शरीर और कार्यों पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ रहा है। एक मेरा स्वयं का भी अनुभव सुना देते। हम एक बार कहीं बॉम्बे या कहीं भट्ठी कराने की सेवा में जा रहे थे, आबू रोड से ट्रेन में बैठे, सीट के नीचे सामान रख रहे थे, तो सीट के नीचे कुछ ऐसी नुकीली चीज थी लोहे की, तो उंगली को लग गई और आधा इंच उंगली कट गई और खून निकलने लगा और दर्द भी बहुत होने लगा। अब ट्रेन तो चल पड़ी, ट्रेन में तो कोई दवाई गोली की बात नहीं है, सामान रख दिया, हम सीट के ऊपर बैठ गए और यही उंगली थी, इस उंगली के ऊपर ऐसे ये दूसरी उंगली रख ली और सामने ऐसे करके दृष्टि देते ये संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इस उंगली के ऊपर डाल रहा हूं, इससे इसका खून निकलना बंद हो जाए, दर्द बंद हो जाए। ऐसे दृष्टि देते 25 बार संकल्प किया और उसके बाद उंगली हटा ली, खून निकलना बंद, दर्द भी काफी कम हो गया और 15-20 मिनट के अंदर बिना किसी दवाई गोली के सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो हम साधारण आत्मा नहीं है, हम इस संसार की सबसे हाईएस्ट होलीएस्ट पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, महान आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा। तो हम अपने स्वमानों को पहचाने जाने और अपनी सीट पर स्थित होके चलें, तो हमारे एक एक संकल्प में वो शक्ति आ जाती है असंभव को भी संभव करने की, अपने शारीरिक कर्म भोग पर विजयी बनने की। तो हम अपने महत्व को समझें और स्वमान में स्थित होकर अपने आप को शक्तिशाली बनाए, महान आत्मा बनाए। अगली पॉइंट, श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाने के लिए हम अपने मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाएं, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, सुखी रहें, बाप समान बने, सहज निरंतर योगी बन जाएं, सबके जीवन से विघन और दुख की घटनाएं समाप्त हो जाएं, सबका जीवन सुख शांति बन जाए। ऐसी शुभ भावना रखकर चलने में कोई खर्चा हो रहा है, मेहनत लग रही है, तो करके देखिए। जैसा कि बताया कि हम साधारण आत्मा नहीं, हम जो भी संकल्प कर रहे हैं हमारे एक एक संकल्प में जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करके संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंच रहे हैं, हमारे एक एक संकल्प में वो शक्ति आती जा रही है सिद्ध होने की, वैसा बनने करने की। इसलिए ध्यान देकर चलने की बात है कि हम कैसी भी समस्या परिस्थिति आए लेकिन कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं आने दें। और इस संबंध में बाबा के माँ बाप के बच्चे, कोई विघन परिस्थिति यदि तुम्हारे सामने आए और यदि तुम दिल से बाबा को याद कर कहेंगे प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ मदद करो, तो बाबा तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। याद है ना बाबा के शब्द, और होता है, केवल कहने की बात नहीं, अनुभव है अपना बाबा, अनुभव प्रैक्टिकल हाजिर होता है, एक ऐसा ही प्रैक्टिकल का अनुभव। राजस्थान में जयपुर के पास हिंडौन है, वहां एक दिन की भट्ठी कराने के लिए हम गए, तो बहन जी को पूछा भाई कितने भाई बहन होंगे भट्ठी में, तो बहन जी ने कहा 75, 75 के अंदर ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो हमने मधुबन की 75 टोली तोसा बहन जी को दे दिया, भट्ठी शुरू हुई, होते होते भाई बहन आते गए और एंड में भट्ठी पूरा होने से पहले 85-90 के अंदर भाई बहन हो गए। लेकिन मुझे इस बात का मालूम नहीं है, बहन जी ने गिनती की है तो उन्होंने और 15-20 पीस टोली के बनाकर रख लिए, भाई वो टोली कम पड़ेगी तो भाई जी से ये टोली दिला देंगे एंड में। और अंत में जब भट्ठी पूरी हुई तो बहन जी ने अनाउंसमेंट किया भाई सभी आए और भाई जी टोली देंगे। तो भाई बहने लाइन में आते जा रहे हैं, हम बाबा की याद में टोली देते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। लास्ट में मैंने देखा कि जब 7-8 पीस टोली के बचे हैं तो भाई बहनों की लाइन थोड़ी लंबी लग रही है, ज्यादा लग रहे हैं। तो उस समय मैंने मन ही मन बाबा को याद कर कहा, बाबा अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, ये मधुबन की टोली कम नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे हमने बाबा को दिल से याद कर कहा। और उसके बाद बाबा की याद में आते जा रहे हैं, भाई बहन हम टोली देते जा रहे हैं, आते जा रहे देते जा रहे हैं, कि लेकिन मैं फील कर रहा हूं कि वो टोली कम नहीं हो रही है। जो 7-8 पीस जिस समय थे बाबा को याद कर कहा, तो उसके बाद वो टोली लगभग उतना की उतना ही लग रही है, और उसमें से हम सबको टोली देते जा रहे हैं, आते जा रहे देते जा रहे हैं, और लास्ट में हमने सबको टोली दे दी और उसमें से 3 पीस और बच गए। तो बहन जी लास्ट में बोलती है, भाई जी आपने तो कमाल कर दिया, 75 के अंदर से 85 लोगों को टोली खिला दी और 3 पीस और बचा लिए। मैंने कहा कमाल हमारी नहीं, ये ऊपर वाले बाबा की है, वो जादूगर है तो क्या नहीं कर सकता वो है। तो इसलिए हम केवल ज्ञान हम सब सुनते हैं रोजाना, योग भी सब करते हैं, लेकिन जब किसी के सामने कोई समस्या परिस्थिति आती है तो वहां देख कर कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी खड़ी हो जाती है, प्रश्न उठता है क्या करें कैसे करें, ये करें वो करें, सब कुछ होते भी क्यों कुछ काम नहीं आ रहा, क्योंकि ज्ञान योग का हम प्रयोग करना नहीं आता है। तो अब वो समय आया है ज्ञान और योग का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर विजयी बने। इसलिए कैसे विजय बनेंगे, क्या विधि तरीका है, उसके हम साथ साथ प्रैक्टिकल के अनुभव सुना रहे हैं। जब हमने किया तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो और हम बतला रहे थे कि अपने मन की भावनाओं को सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी बनाए। जहां हमारे मन में निरंतर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावनाएं हैं, तो उनमें भी इतनी बड़ी शक्ति है कि वो किसी भी नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते। किसी की युगल ज्ञान में नहीं चलती, किसी का पति ज्ञान में नहीं चलता, कोई और दूसरा विरोध करता है, पवित्रता की धारणा में विघ्न डालते हैं, या और कोई समस्या आपको किसी प्रकार की आ रही है, कोई भी आदमी आपके सामने रुकावट डाल रहा है, प्रयोग करिए अपने मन की शुभ भावना शुभ कामनाओं का, निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाएगा। एक ऐसा ही प्रैक्टिकल का अनुभव, एक भाई ज्ञान में चलते थे, उनका बड़ा बिजनेस था, लेकिन युगल ज्ञान में नहीं चलती थी, बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना है, इतना विरोध करती थी। लेकिन बिजनेस बड़ा होने के कारण बार बार बाहर आना जाना पड़ता था, तो बाबा के सेंटर पर क्लास करके आ जाते थे। लेकिन ऐसे कब तक ज्ञान में चलना, कोई 2-4 दिन की तो बात नहीं है, रोजाना की बात है। तो वो भाई मधुबन आए बाबा से मिलने के लिए, क्लास के बाद हमारे से मिले और उन्होंने यही प्रश्न किया, भाई साहब मेरी युगल बहुत विघ्न डालती है, ज्ञान में चलने से रोकती है, मैं क्या करूं। तो हमने उन्हें बताया, यदि आप अपने युगल को सहयोगी बनाना चाहते हो, परिवर्तन करना चाहते हो, तो अमृत वेले योग में 7 दिन इमर्ज कर शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन दो। क्या जिस भी आत्मा को, उस भाई को तो हमने बताया कि अपने युगल को, लेकिन आपके सामने जो भी आत्मा विघन रूप बन रही है, ज्ञान में चलने से रोकती है, तो और आप उसको परिवर्तन करना चाहते हो, तो उस आत्मा को अमृत वेले सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर, अगर आप जानते हैं तो लाइट के रूप में इमर्ज कर दें, नहीं जानते तो आत्मा के रूप में इमर्ज कर लो, लेकिन प्रयोग ये अमृत वेले ही करना है। और क्या करना है कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। तो अमृत वेले योग में इमर्ज कर सूक्ष्म लाइट के रूप में, और इस तरह से, और दूसरा बताया कंप्लीट हमारे मन में उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। आप योग का प्रयोग तो कर रहे हो, शुभ भावना को दान दे रहे हो, लेकिन पता नहीं यद बदलेगी नहीं बदलेगी, सहयोगी बनेगा नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। इसलिए कंप्लीट पहले हमारे मन में उस आत्मा के प्रति शुभ भावना होनी चाहिए, जरा भी नेगेटिव भावना ना हो, तो आपका पावरफुल वाइब्रेशन शुभ भावना का प्रभाव असर करेगा। और ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है, कैसे करना है वो बतला रहे हैं कि अमृत वेले योग में जिस आत्मा को आप परिवर्तन करना चाहते हो, उसको अमृत वेले लाइट के रूप में इमर्ज कर, और इस तरह से बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशंस लेके दो कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। और जिस बात में वो विरोध करती थी वो बात ही बता दो उस समय, क्योंकि उस समय हर एक व्यक्ति का अंतर मन शांत और खाली है, क्योंकि हम बाह्य मन से तो सो जाते हैं और लेकिन अंतर मन हमारा जागृत होता है। तो उस समय जिस आत्मा को भी आप शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देंगे, या जैसे विचार देंगे वो उस तक पहुंचते हैं और उसका अंतर्मन जागृत है, खाली है, शांत है, तो उन वाइब्रेशंस को सहज ही कैच कर लेगा और फिर वो आत्मा वैसे करेगी। इसलिए प्रयोग अमृत वेले ही करना है। तो उस भाई को हमने बताया कि मैंने कहा आप अमृत वेले योग में अपने युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर ऐसे शुभ भावनाओं के 7 दिन पावरफुल बाबा से वाइब्रेशंस लेके देना और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता। तो वो यहां से चले गए। जाने के बाद अपने घर अमृत वेले उठकर अपने युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर और बाबा से ऐसी शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशंस लेके दिए कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो, और वो बात उस समय बता दी जिसमें विरोध करती थी। ऐसे उसने 2 दिन प्रयोग किया अमृत वेले योग में। 3रे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्ठी थी, तो सोचा कि आज योग की भट्ठी है तो योग की भट्ठी में तो जाना है। तो मैंने 2 दिन तो प्रयोग किया ही शुभ भावनाओं का, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, तो युगल से पूछ कर देख लेता हूं, जैसा जवाब मिलेगा उसे पता चल जाएगा कि शुभ भावनाओं के प्रयोग का कुछ असर हुआ या नहीं। तो गया युगल के पास और कहा कि देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्ठी है और यदि आप कहो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। जो रोजाना इतना विरोध करती थी ऐसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से तैयार बैठी। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन? उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। तो आप में से भी किनों के सामने ऐसी कोई समस्या हो तो आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। अगली पॉइंट, श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाने के लिए हम सदैव भगवान को साथी बनाकर चले। ज्ञान तो हम सब सुनते हैं रोजाना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, मुख से रटते भी रहेंगे मनी मन, लेकिन जब विघन परिस्थिति आती है तो सब कुछ एक तरफ रह जाता है, उसके प्रभाव आ जाते। अगर सर्वशक्तिवान हमारे साथ है और हम अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर स्थित हैं तो वहां परिस्थिति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, वो सूली से कांटा बन जाएगी। इसलिए हम केवल मन से रिवाइज नहीं करें, उसका स्वरूप बन जाएं, उसमें स्थित हो जाएं, मन से स्वीकार कर लें कि मैं ये हूं और सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथ है। जिनका सर्वशक्तिवान साथी बनकर साथ दे रहा हो तो वहां असंभव भी संभव हो जाएगा, सब कुछ सहज और सरल होता चला जाएगा, कुछ मुश्किल है ही नहीं। प्रैक्टिकल का अनुभव, मान लो बहन जी आपको कोई ऐसी सेवा दे दे जो आपने कभी की नहीं हो, तो सोचेंगे ना मैं ये सेवा कैसे करूंगी या करूंगा। तो लेकिन आपने बाबा की सेवा समझकर आप हां कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बाबा आपसे वो कार्य करवा लेगा, क्यों कराने वाला तो वो है, आप और हमको तो सिर्फ निमित्त ही बनना है। इसलिए बाबा की सेवा में कभी भी ना नहीं करना है, सदा हां जी का पाठ पक्का करके चलना है। तो ऐसा ही एक प्रैक्टिकल का अनुभव, कहीं भी कुछ नहीं भी आए तो वहां बाबा का आह्वान कर लो, बाबा ये बात ऐसे ऐसे आप देख लेना, तो वहां सब कुछ सहज और सरल हो जाए। एक ऐसा ही अनुभव, हम नए नए मधुबन निवासी बने थे, जैसा कि बताया बहन जी ने 47 ईयर्स हो गए ज्ञान में चलते और 42 ईयर्स हो गए मधुबन में समर्पित होकर सेवा करते। तो 1 साल ही हुआ था उस समय, तो उस समय तो शांतिवन ज्ञान सरोवर कुछ नहीं बना था, जो था पांडव भवनी था, यहीं दादियां रहती थी, बाबा भी यहीं आते थे ओम शांतिवन में। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया, जिन भाई बहनों को क्लास कराना भाषण करना नहीं आता है उनके अंदर वो कला आए। तो दादी ने मेरे को भी कहा कि आपको भाषण करना है, हम तो 1 ही साल हुआ था उस समय, किसी को हम 2 शब्द भी किसी के आगे खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी अपने को। अब दादी ने कहा तो हम ना भी नहीं कर सके, भाषण करना आता नहीं इसलिए हम हाँ भी नहीं कर सके, हमने चुपचाप सुन लिया। और मैं बाबा के कमरे में गया और मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा मेरे को दादी ने बोला है भाषण करना है, तो मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है, मैं कैसे भाषण करूंगा। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। बस ये पॉइंट स्मृति में आते ही थोड़ा शक्ति आ गई। हाँ मैंने कहा ये बात तो ठीक है, इसका मतलब हमने कल्प पहले भी भाषण किया है, सफलता पाई है और फिर से वही करना तो कौन सी बड़ी बात है। तो तैयार हो गई, प्रोग्राम ऐसा था और बाबा को ये भी बोल दिया अगर बाबा कुछ नहीं आए तो आप ही आना और आप ही भाषण कराना, ये भी बाबा को बोल दिया। प्रोग्राम ऐसा था टॉपिक किसी को बताए नहीं जाएंगे, कहा ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी और उसी समय आओ, चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो, ऐसा वो प्रोग्राम था। अब तैयारी करे तो क्या करे, टॉपिक का ही मालूम नहीं है, है? और उसका प्रोग्राम का नाम रखा गया काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता, अर्थात एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। तो अर्थात आप जो हैं वो नहीं, कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए। तो एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग देखने सुनने के लिए आए। रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया है, सब दादे दादियां आगे बैठे हैं और जिनको कुछ बोलना नहीं आता हो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। 7 बहनें 7 भाई सब नए नए, उनमें से एक हम भी थे। तो आप सोच सकते हैं कैसा वो सीन होगा। तो प्रोग्राम शुरू हुआ जी, 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, चौथा नंबर हमारा आया। हम भी गए, चिटकी उठाई और खोल के देखा तो बड़ा वंडरफुल टॉपिक निकला। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले कि इस पर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने से अलग टॉपिक है। अच्छा, सोचने का भी टाइम नहीं, माइक के आगे खड़े हैं, बोलना ही अपने को है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया यार, मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ। और ऐसा नहीं हो कि लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पाए, भाषण अच्छा होना चाहिए, ये भी बाबा को याद करके के बोल दिया। और जैसे ओम शांति कह के बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो, पॉइंट स्मृति में आते गई, हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए, उसमें फर्स्ट नंबर आया। तो इसलिए आप सोचिए, किसको दो शब्द बोलना नहीं आता और इतना अच्छा भाषण कर जाए, फर्स्ट नंबर आ जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला है बाप। अभी ये तो आपने बड़ा विचारणीय बात, सवाल पूछ लिया। अब ये बात है कम से कम 41 साल पहले की, तो सारी बातें तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो स्मृतें आई वो आपको बता देते हैं। पहली बात तो कि हमने मन से उस बात को ये स्वीकार कर लिया कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, क्योंकि अब भाई है तो भाई की टोन में बोलने की आदत है, अब टॉपिक ऐसा मिला तो मन से जब स्वीकार कर लिया तो फिर मुख से वैसा ही बोल निकलने लगा। यदि मैं ब्रह्मा कुमारी होती तो सेंटर की रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी बना के रखती, अच्छे अच्छे भाई बहनों की पार्टी लेके मधुबन आती, दादियों से मिलाती, पर्सनल बाबा से मिलाती और दादी जी कहती तो योग शिविर की पार्टी लेके आती, और उस समय यहाँ कुमारियों की ट्रेनिंग चल रही थी तो वो पॉइंट भी टच हुआ बुद्धि में। तो मैंने कहा दादी जी कहती तो मैं कुमारियों की भट्टी में भी ट्रेनिंग कराती, क्लास कराती, और ऐसा क्लास कराती कि सभी कुमारियां ये कहती कि दादी जी जहां आप भेजेंगे वहीं सेंटरों पर हम जाएंगे, तो जो सेंटरों पर आज बहनों की कमी है वो पूरी हो जाती। तो ऑन द टॉपिक बोला, अब बाबा ने जिस समय जो टच किया हमें वही हम बोलते गए, तो इसलिए उसमें फर्स्ट नंबर आया। तो इसलिए कहने का भाव यही है कि बहनों की तरफ से, बहने नहीं ये, साधारण बहने नहीं ये, पवित्रता की देवियां हैं, भगवान के राइट हैंड है, इनके द्वारा बाबा अपना कार्य करा रहा है। इसलिए कभी भी बहनों की तरफ से कोई भी सेवा मिले, इसलिए कभी ना नहीं करना, समझ लो वो बाबा की श्रीमत है, उसमें ही हमारा कल्याण समाया हुआ है। तो ये बाबा के राइट हैंड है, तो इसलिए सदा हाँ जी का पाठ पक्का करके चलेंगे तो कदम कदम पर सहज सफलता मिलती रहेगी। अब देखो टाइम तो आपका होने को आ रहा है, अनुभव तो बहुत है, बाकी तो अभी हम अगर कहेंगे तो आगे सुनाएंगे, नहीं तो पूरा करते हैं जैसा आपको। बहन जी क्या विचार है, ठीक है, चलो 1 बजे तक सुनाए, ठीक है। तो अगली पॉइंट, श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाने के लिए हम अपनी बुद्धि की लाइन सदा बाबा के साथ क्लियर रख के चले, बुद्धि की लाइन सदा बाबा के साथ क्लियर रख के चले। सभी यही चाहते हैं, बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी तो क्या होगा, किस समय क्या करना है उसकी सही टचिंग हमें बाबा से मिलती रहेगी और वैसा करने में सफल होते रहेंगे। अब बुद्धि की लाइन सदैव बाबा के साथ क्लियर कैसे रहेगी, उसके लिए बातें तो बहुत हैं, लेकिन दो मुख्य बातें शॉर्ट में बतला रहा हूं मैं। पहली बात कि बुद्धि का स्वच्छ और पवित्र होना बहुत जरूरी है। तभी बुद्धि समय किस समय क्या करना उसकी सही टचिंग हम ले सकेंगे, बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी बाबा। दूसरा, आज जब बाबा ने जो मुरली में कहा अब वापस घर जाने का समय आया है, तो किसी को कहीं जाना होता क्या करेंगे? अब मान लो आपको कल जाना है तो क्या करना होगा? जाने से पहले जो जरूरी सामान सब एक पैक करके रख लेंगे और टाइम हुआ उठा के चल पड़े। तो यहां पर स्थूल की बात नहीं, यहां पर सूक्ष्म की बात है। तो बुद्धि जो हमारी अनेक बातों के विस्तार में फैली हुई है, वहां जाना है, ये करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, दुकान को बढ़ाना है, तो अब इशारा क्या दे रहा है समय का? अब इन सब बातों से बुद्धि योग निकाल के कि बाबा में लगाओ, क्योंकि वापस घर जाना है। तो विस्तार को समेट कर सार स्वरूप बन जाए तो बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी। तो हम सब, पहली जो बात बताई, हम सब पवित्र तो बने हैं लेकिन उसमें संपूर्णता आ जाए उसमें हर एक नंबर वार है। तो क्या है पवित्रता की संपूर्णता? उसके लिए मुरलियों में बाबा ने अव्यक्त वाणियों में सात बातें बताई है। उन सातों बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाकर चलें तो आप पवित्रता में संपूर्णता आती चली जाएगी। और जहां पवित्रता में संपूर्णता है तो बुद्धि की लाइन बाबा के साथ सदैव क्लियर रहेगी। और जहां लाइन क्लियर है तो कब क्या क्या करना उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में हम सफल होते रहेंगे। तो कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा। तो सुनिए एक ऐसा अनुभव, तो मैं वो सात बातें पहले बताऊं, अनुभव बाद में। संपूर्ण पवित्रता का पहला स्वरूप है स्वच्छता। क्या स्वच्छता? खाने की, रहने की, विचारों की, कपड़ों की, स्थान की, सब प्रकार की स्वच्छता है, सफाई है। तो उससे बुद्धि की पवित्रता को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। दूसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का मन, वचन, कर्म से ब्रह्माचारी बनना। मन, वचन, कर्म से ब्रह्माचारी बनना, अर्थात ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ मन सा वाचा कर्म ना किया है उसको कदम कदम पर फॉलो करके चलने वाली आत्मा को ब्रह्माचारी कहा जाता है, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तीसरा स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का, बाबा ने कहा एक व्रता। एक व्रता अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी धारणा हमारी कहां तक बनी है? वो भी हर एक चेक कर ले अपने आप को, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। चौथी बात संपूर्ण पवित्रता की, बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, इसलिए उससे भी मुक्त बनो। सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का ही स्वरूप बन के चले, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। पांचवा स्वरूप, पांचवा स्वरूप एक साकार मुरली में बाबा ने कहा अमृत वेले से रात्रि तक, अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। वो भी हर एक चेक कर लें अपने आप को। छठा स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का संपूर्ण निर्विकारिता, अर्थात किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो। एक मुरली में बाबा ने कहा मोटे मोटे पांच विकारों को तो सब बच्चों ने जीत लिया है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं ना, उनको अभी तक कई उन्हें अपने पास संभाल के रखा हुआ है। तो वो क्या है बाल बच्चे? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जेलसी, नफरत, सुस्ती, आलस, छलबेलापन, पर चिंतन, नेगेटिव चिंतन, माना जो भी नेगेटिव बातें, उनमें से यदि एक भी हमारे अंदर है तो वो भी अपवित्रता की लिस्ट में गिना जाएगा। तो संपूर्ण निर्विकारिता, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। सातवीं बात बाबा ने कहा संकल्प अथवा स्वप्न में भी कोई भी अपवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो वो भी हर एक अपने आप को चेक कर ले। तो इन सातों बातों को आप अपने जीवन की धारणा में लाकर जितना चलेंगे तो जितना उतना उतना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी। और जहां पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी तो बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहेगी, और जहां लाइन क्लियर है तो कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में हम सफल होते रहेंगे, तो कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। एक ऐसा ही प्रैक्टिकल का अनुभव, एक बार हम नेपाल जा रहे थे भट्टी कराने बाई रोड, तो इंडिया बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर भी अपना सेंटर था, उधर नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर भी अपना सेंटर था, बीच में दोनों देशों का बॉर्डर पड़ता था। तो इंडिया बॉर्डर पार करके हम जैसे ही नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे तो उस दिन कुछ मिलिट्री वालों का आपस में झगड़ा हो गया था, तो नेपाल का बॉर्डर बिल्कुल बंद किया हुआ था, ना किसी को जाने दे रहे थे ना आने दे रहे थे। तो हम भी पहुंचे तो हमारे को बुला के वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। और अब वहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर जो अपना सेंटर है वहाँ भट्टी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, और ये मिलिट्री वाले कहते हैं वापस जाओ हम नहीं जाने देंगे। तो एक बड़ी समस्या हो गई ना, अभी क्या करें। तो हमने वहां से थोड़ा सा अलग होकर और बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ा और बाबा को सारी समस्या बताई, बाबा अभी ऐसे ऐसे हम नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे हैं और यहाँ से 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर है और वहाँ भट्टी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, और ये मिलिट्री वाले कहते हैं कि हमने बॉर्डर बंद किया हुआ है, वापस जाओ हम नहीं जाने देंगे। तो अब मुझे क्या करना है वो आप ही बताओ, मैं वही करूंगा। ऐसे हमने सारी समस्या बाबा को याद कर बताई। 2 मिनट याद करने के बाद बाबा से टचिंग मिली, बच्चे इन मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ, आप उससे जाके बात करो। तो हमने देखा तो मैंने कहा कोई बैठा तो है, तो एक और भी भाई थे हमारे साथ वहां के, दोनों को सफेद कपड़े बैज लगा हुआ था। तो हमने उस भाई को बोला कि मैंने कहा भाई ये मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर देखो उस साइड को बैठा हुआ है, उससे चल के बात करो। तो गए तो उस भाई ने कहा साहब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हैं और ये भाई हमारे माउंट आबू हेडक्वार्टर से आए हैं और हमारा यहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर हमारा आश्रम है और इनके लिए वहाँ बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, 250-300 लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, तो हमको नेपाल के अंदर जाना है। अच्छा अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए, हाँ जी, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं फिर तो जाइए। तो 2 मिनट के पहले जो ना हो गई 2 मिनट के बाद हाँ हो गई। तो कैसे हाँ हो गई 2 मिनट के बाद, बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर थी तो सही समय पर सही टचिंग को कैच किया और वैसा करने में सफल हो गए। तो इसलिए वर्तमान समय भी आगे आने वाले समय में इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अनेक विघन परिस्थिति जो आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी ऐसी बातें आएंगी, क्या करें कैसे करें। अगर बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर है तो सही समय पर आप सही टच ले सकेंगे। एक बार हम बिहार गए थे तो इलेक्शन का समय था, अभी वहां इलेक्शन होने वाला है। तो बहुत गाड़ियों को चेक कर करके भेज रहे थे, 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। अब हमारे को थोड़ा ऐसे ही देरी हो गई तो क्लास का टाइम हो गया था, तो उस भाई ने भी हमारी गाड़ी लाइन में खड़ी कर दी। तो मैंने उस भाई को मैंने कहा भाई यहाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो आप जिधर से गाड़ी आ रही है उधर से चलो। मैंने कहा बोल भाई साहब आगे पुलिस वाले वो रोकेंगे। मैंने कहा आप चलो सही, कौन हमारे साथ है, किसकी सेवा में हम जा रहे हैं। तो मैंने जब उसको बोला तो वो चल पड़ा भाई उधर से, जिधर से गाड़ी आ रही थी दूसरी साइड से चल पड़े। आगे जाके पुलिस वालों ने रोका तो हमने खिड़की खोल के कहा ओम शांति। अच्छा अच्छा तो ओम शांति वाले ना, जाओ जाओ जाओ, मैं सो गए। तो उसके साथ लाइन क्लियर है हमारी तो दुनिया की फाइनल बात है कि आपकी सभी लाइन दुनिया की आपके लिए क्लियर ही मिलेंगी, कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा। इसलिए बुद्धि की लाइन क्लियर रख के चलना बाबा के साथ बहुत बहुत जरूरी है। लास्ट में एक पॉइंट, इससे आपके अनेक प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो पर्सनली मिल सकते हैं, आंगन में होते हैं हम 10 से 2 बजे तक, शाम को 4 से 6 बजे तक। कईयों के मन में ये विचार आते होंगे मेरे सामने विघ्न क्यों आ रहे हैं, मेरी तबीयत बार बार खराब क्यों होती है, मेरे को सब क्यों लोग बोलते रहते हैं, मेरे पीछे सब क्यों पड़े रहते हैं। होते होंगे कई, मेरे सामने विघ्न क्यों आ रहे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न कईयों के सामने आते मन में उठते होंगे। उन सब का जवाब आपको मिल जाएगा इस बात के द्वारा। हमको बाबा ने कर्मुखी गुहे गति का ज्ञान दिया। थोड़ा मैंने पहले बताया कि आज जिसके साथ जो भी विघन परिस्थिति बातें समस्याएं आ रही हैं, हम तो कहने में तो कह देते हैं ये मेरे सामने विघन डालते रहते हैं, मेरे रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं, ये हट जाए तो मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हमारे कर्मों के हिसाब किताब अनुसार ही हो रहा है। वैसे ही कर्म का हिसाब किताब चुकत होना है और उसमें ही कल्याण समाया हुआ है। अगर ये हम ज्ञान इमर्ज रूप में रख के चलते हैं तो वह अनेक हलचल से आप मुक्त हो जाएंगे। तो एक ऐसा ही प्रैक्टिकल का अनुभव, एक शहर में चौराहे पर एक व्यक्ति चाय की छोटी सी दुकान करता था। बहुत ईमानदारी से मेहनत करके थोड़ी सी कमाई जमा करता और जब दुकान बंद करके जाने लगता तो तीन चार गुंडे आते, उसको खूब मारते पीटते और उसकी सारी कमाई छीन कर ले जाते। वो व्यक्ति बड़ा परेशान, दो दिन बीते, चार दिन बीते, 15 दिन, महीना, 2 महीना, ऐसे करते करते 3 महीना बीत गए। वो भगवान को दोष देने लगा, हे भगवान, मैं इतनी ईमानदारी से मेहनत करके थोड़ी सी कमाई जमा करता हूं, ये 3-4 गुंडे लोग आके मेरे को मारते पीटते मेरी सारी कमाई छीन के ले जाते हैं, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते। ऐसे वो भगवान को दोष देने लगा। तो एक दिन जब वो सोया हुआ था तो सपने में भगवान उसके पास आए, बोलो भाई आपने मुझे याद किया है। जिस रूप में वो भगवान को मानता था, तो हाँ मैंने इसलिए याद किया कि मैं इतनी ईमानदारी से मेहनत करके थोड़ी सी कमाई जमा करता हूं और ये 3-4 गुंडे लोग आके मेरे को मारते पीटते हैं, मेरी सारी कमाई छीन के ले जाते हैं और मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते। बोला आप जानना चाहते हो? बोला हाँ मैं जानना चाहता हूं। तो उसको दिखाया, देखो आप पिछले जन्म में राजा थे और आपने राजा बनने के लिए कितने लोगों को मरवाया, कितनों को जेल में डाला, कितनों का धन लूटा, उसके बाद आप कहीं राजा बने। तो जिन लोगों का आपने धन लूटा, मरवाया, जेल में डाला, आज वही लोग आके आपको मार पीट रहे हैं और आपकी सारी कमाई छीन के ले जा रहे हैं। उसको दिखाया, जब उसने देखा तो उसकी आंखें खुली, हाँ ये तो मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब, जब मेरे ही कर्मों का फल है तो मुझे ही चुकत करना पड़ेगा। तो फिर उसने कहा ठीक है, मेरे कर्म का हिसाब किताब मैं चुकत करूंगा, लेकिन इस तरीके के अलावा कोई और भी तरीका है हिसाब किताब चुकत करने का? तो भगवान जी ने कहा हाँ और भी तरीका है। तो बोल वो बताइए। तो बोल वो तरीका यह है कि कुछ दिन के बाद आपके पास 3-4 सफेद वस्त्रधारी भाई बहने आएंगे और आपको ईश्वरीय निमंत्रण का पर्चा देंगे। उस पर्चे में जो एड्रेस पता लिखा हो आप वहां जाना और वहां ज्ञान सुनना, मेडिटेशन सीखना, और जब मेडिटेशन सीख के आप मेडिटेशन करने लगेंगे तो उससे आपके पाप कर्म विकर्मों का हिसाब किताब चुकत होता जाएगा, और जहां हिसाब किताब चुकत हो जाएगा तो सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर भगवान जी गायब हो गए। अब वो सोचने लगा भाई 3-4 सफेद वस्त्रधारी भाई बहने कब आएंगे। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 1 सप्ताह के बाद 3-4 सफेद वस्त्रधारी भाई बहन आए। कहीं मेला या प्रदर्शनी लगी होगी बाबा के ज्ञान की, तो उसका पर्चा देने के लिए उसके पास पहुंचे तो पहले से इंतजार कर रहा था। तो पर्चा लेकर उस जगह पर गया, वहां ज्ञान सुना और कोर्स किया और मेडिटेशन सीख के मेडिटेशन करने लगा। तो जब वो मेडिटेशन करने लगा तो कुछ दिनों के बाद वही लोग फिर उसको आके मार पीट रहे हैं, उसकी सारी कमाई छीन के ले जा रहे हैं, लेकिन वो जरा भी दुखी परेशान नहीं है। तो ऐसे कुछ दिन के बाद उन लोगों ने इसको पूछा, भाई पहले जब हम आपको मारते पीटते थे तो आप बहुत दुखी परेशान होते थे, लेकिन अब आप जरा भी दुखी परेशान नहीं है, क्या कारण है? बोल मुझे ज्ञान मिल गया है, मैं मेडिटेशन करता हूं। बोल कौन सा ज्ञान मिल गया है? बोला आप भी हमारे साथ चलो। तो उनको भी सेंटर पर लेके गया, उन्होंने भी ज्ञान सुना, कोर्स किया और वो भी ज्ञान में चल पड़े, तो सबका ही कल्याण हो गया। तो इस तरह से हिसाब किताब को चुकत करना है तो हम योग बल जमा करें, उससे हिसाब किताब चुकत होता जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और योग बल कैसे बढ़ेगा वो 3 अभ्यास जो बताए। लास्ट में 1-2 मिनट का और बात सुना के मैं पूरा करता हूं। एक बाबा का स्लोगन आप सबने लिखा हुआ देखा होगा, कई जगह सेंटरों पर घरों में भी लिखा होता है, बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। और भगवान जी सोचने का काम भी हमारे लिए करता है, क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे करें, क्या करें। हम सोच सोच के अपने आप को भारी कर लेते, लेकिन भगवान ने जब खुद कहा है मैं तुम्हारे लिए सोचने का काम कर रहा हूं, तुम सिर्फ एक जिम्मेवारी निभाओ, मुझे याद करो। हम उस जिम्मेवारी को भूलकर हम सोचने में लग जाते। तो हम अपनी एक जिम्मेवारी निभाएं, कहीं भी कोई बात, समस्या, परिस्थिति आई है, बाबा को दिल से याद कर बता दो, और मेरा काम है बाबा को याद करना, वो सब कुछ ठीक कर देता है। एक अनुभव, एक जगह हम भट्टी कराने के लिए गए, दो दिन की भट्टी थी। तीसरे दिन बहन जी ने उन्हीं के कनेक्शन के एक एक सेंटर पर अलग अलग जगह, तीन दिन की भट्टी थी, एक एक दिन की तीन जगह भट्टी थी, तो एक ही दिन की भट्टी होने के कारण दिन में भोजन के बाद फिर से तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे, तो तीन दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिला था। काम चल रहा था लेकिन रेस्ट की थोड़ी कमी हो रही थी। तो चौथे दिन वहां की बेंजी ने चौथे सेंटर पर एक मॉर्निंग क्लास रख दिया। जब चौथे सेंटर पर पहुंचे तो वहां की बेंजी ने जाते ही प्रोग्राम दे दिया कि भाई जी एक क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना है। अब मुझे तो वही क्लास कराना थोड़ा सा भारी लग रहा था क्योंकि तीन दिन से दिन में रेस्ट नहीं मिला था। बहन जी ने और आगे का प्रोग्राम दे दिया। बहन जी की बात मैंने सुन ली, उनको कुछ नहीं बोला। मैं बाबा को याद करके कहने लगा, बाबा अभी देखो ये शरीर रूपी गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है, और बहन जी ने प्रोग्राम दिया क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना है, तो अब कैसे क्या हो सकता है वो आप जानते हो। मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, सेवा कराने वाले तो आप हो। ऐसे मैंने बाबा को दिल से याद कर बता दिया। बस भगवान जी के लिए तो कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं, सेकंड की बात है। तो क्लास पूरा किया, नाश्ता किया, और उसके बाद बाबा ने बहन जी की बुद्धि को थोड़ा टच किया। तो बहन जी आके कहती है, अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया कि अभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाना क्लास कराने। वाह बाबा, इसका मतलब हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है, तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है ना। तो सदैव याद रहे कि भगवान मुझे देख रहा है, देख तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरे लिए क्या सोचता होगा, हर एक अपने आप से पूछे, जैसी आपकी स्थिति पुरुषार्थ होगा। तो इस तरह से इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चले। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाने के लिए तो परिस्थितियों पर हम स्वतः विजयी बनकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहली बात बताई, तीन अभ्यास, 50 लोगों को आत्मा देखने का, 50 बार शरीरी बनने की प्रैक्टिस, तीसरा बताया स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो, और दूसरी बात बताई कि अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव पावरफुल बनाएं, तीसरी बात बताई कोई न कोई सुमान का अभ्यास कर चलें, चौथी बात बताई व्यर्थ से अपने आप को कंप्लीट मुक्त बनाएं, सदैव समर्थ विचारों का शक्ति स्वरूप बनकर चलें, और चौथी बात बताई अपने मन की भावनाओं को सुबश्रेष्ठ कल्याणकारी बनाएं, उसके बाद बताया कि अपने श्रेष्ठ सम्मान में रहे मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, और उसके बाद बताया कि कर्मों की गुहे गति को ज्ञान को इमर्ज रूप में रख के चलें और बुद्धि की लाइन सदैव बाबा के साथ क्लियर रख के चलें। लास्ट में बताया स्लोगन याद रखो कि मेरा काम है सिर्फ कोई बात समस्या आए दिल से बाबा को याद कर बता दो, बाबा ये बात ऐसे, मेरा काम है दिल से बाबा को याद करना। तो इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलेंगे तो श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाकर परिस्थितियों में विजयी बनकर सदा आगे बढ़ते उठते उड़ाते रहेंगे, बाप समान बन जाएंगे। तो यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति।